गरा क्यों है? कोई और नहीं, इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी किताब तफसीर कबीर में लिखते हैं, नया एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन है अभी छपा है उसमें भी ये जुमला मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि एडिट करके उसे हस्प नहीं किया गया। वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बुलंद आवाज से पढ़ा करते थे। बनू उमैया की सल्तनत में कोशिश ये की जाती थी कि अली की याद तक लोगों के जहनों में आने ना पाए, अली की याद को दिलों से और जहनों से मिटाने के लिए, उनके आसार को मिटाने के लिए बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज से कहने पर पाबंदी आयत की गई। तवज्जो है, बात कहां से चलती है कहां तक पहुंचती है, लेकिन ये अबवाब फवाइल भी हैं और अबवाब मसाइब भी हैं साथ साथ। अली की दुश्मनी में क्या छोड़ दिया कहना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अल्लाह को जेब नहीं देती ये बात कि जिन्होंने अली की दुश्मनी में यहां बिस्मिल्लाह तर्क कर दी हो, वहां अली की दुश्मनी की बिना पे उनसे जन्नत सल्ब कर ली जाए? अगर जन्नत अहम है या बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह अहम है ना कि जन्नत। बिस्मिल्लाह सलामत है तो करोड़ों जन्नतें तख्लीक हो सकती हैं। बिस्मिल्लाह से जन्नत तख्लीक होती है। बिस्मिल्लाह है मैं, ये जो शर्त है ये रिवायत है मासूम से, गैर मासूम से, असहाब से कि पैगंबर ने फरमाया कि सरात से कोई गुजर नहीं पाएगा मगर ये कि उसके पास गुजरनामा मौजूद हो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये खुलात की गढ़ी हुई रिवायत थोड़ी है, ये शियों की गढ़ी हुई रिवायतें नहीं है। अली एक हकीकत है, अली बातिन मोहम्मद का नाम है। और मोहम्मद, ये जुमला मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, तमाम उरफा बुजुर्ग उरफा ने ये बात लिखी है, मोहम्मद जात पाक मोहम्मद जात मुबारक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहर अतम है कलमे अल्लाह का, लफ्ज मुबारक अल्लाह का मजहर अतम ज़ात मुबारक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर यहां तक बात पहुंच गई तो आप बताइए कि बिस्मिल्लाह मुकम्मल हो सकेगी मोहम्मद शनासी के बगैर? नारा लगाने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, घटती नहीं है। जात गिरामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लफ्ज़ जलाला अल्लाह का मजहर अतम है। अब जो लोग ये इस्तिलाह और ये जबान नहीं जानते वो कहेंगे देखिए शिर्क शुरू कर दिया इन्होंने, मोहम्मद को अल्लाह बना दिया। नहीं, मोहम्मद को अल्लाह नहीं बना रहे, अल्लाह अल्लाह है, उसके नाम मुबारक लफ्ज़ अल्लाह का मजहर कामिल मोहम्मद है। मिन जुमला और मुमासिलतों के एक सामने की मुमासिलत यह कि लफ्ज़ अल्लाह में भी तमाम हरूफ वो हैं जिनमें किसी पे नुक्ता नहीं है, نام محمد میں بھی تمام حروف وہ ہیں جس پہ نقطہ نہیں ہے. لفظ مبارک اللہ میں بھی صفات سب جمع ہیں لیکن کوئی ایک صفت کا رنگ بھی غالب نہیں آئے. اسم مبارک محمد میں بھی صفات سب جمع ہیں مگر کسی ایک صفت کا بھی رنگ غالب نہیں آئے. جتنے صفات رب ہیں سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ سورہ مبارک حدید میں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے اوصاف چار گنائے گئے ہیں، هو الظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ چاروں اسماء ذات مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صدق کرتے ہیں. اعتبارات الگ الگ ہیں، مصطفیٰ ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں، مصطفیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور یہی اوصاف ان کے وصی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میں بھی پائے جاتے ہیں. علی ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں، علی اول بھی ہیں علی آخر بھی ہیں. یہ مطالب توحید کے مطالب کا تسلسل ہے. یہ سب سمجھنے کے لیے حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، تقوی چاہیے، تقوی چاہیے، دل کی پاکی چاہیے. آئینہ نفس پاک ہو، آئینہ دل صاف ہو تو یہ باتیں سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں، ورنہ ہر مقام پر ہزار اشکالات پیدا ہوتے ہیں. یہ کیسے، یہ ناممکن، یہ شرک، یہ کفر، یہ بدعت، یہ غلو، یہ ضلال، یہ گمراہی. افسوس تو یہی ہے کہ امت نے قرآن مجید کو کلمہ بکلمہ لفظ بلفظ معصوم سے پڑھا نہیں. اگر معصوم کی ذات سے اور معصوم کے مکتب میں قرآن مجید کی تحصیل ہوتی تو پھر اس امت میں کوئی اختلاف و افتراق پیدا نہیں ہوتا. اختلاف و افتراق اس لیے کہ معانی قرآن کو معصومین سے حاصل نہیں کیا گیا، اور جو کچھ معصوم سے ملا اسے قبول نہیں کیا گیا. وہ جو روایتیں ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے اپنی آنکھیں بند کی تو سب سے پہلے جناب امیر نے عہد کیا کہ میں اس وقت تک ردا دوش پر نہیں ڈالوں گا جب تک کہ قرآن جمع نہ کروں. اس روایت کو بہت غلط سمجھا گیا ہے ہر طرف، تمام مسالک میں اشتباہ ہے. افسوس یہ کہ بہت سے لوگ اس روایت سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ تحریف کے شبہے کو تقویت پہنچاتے ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہو گئے ہیں، اور اس سے سہارا لیتے ہیں کہ جو نسخہ علی ابن ابی طالب لے کے آئے تھے وہ اس وقت جو حکومت قائم کر لی تھی جن لوگوں نے، انہوں نے وہ نسخہ قبول نہیں کیا. درایتاً آج دنیا کی بہت سی لائبریریز میں اور بہت سے میوزیمز میں ایسے قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے ہیں جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ بخط علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے دست مبارک سے لکھا ہوا ہے. وہ نسخے اٹھائیے اور موجودہ چھپے ہوئے قرآن سے ملائیے، کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے. ایک حرف کا اختلاف نہیں ہے. پھر یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ اس سے مختلف تھا؟ توجہ ہے، یہاں پر وہ بحث میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے روایت، ایک ہے درایت. ایک نسخہ ہمارے سامنے ہے، आप जाके लैब में जरूर मजीद सर्च कर लीजिए, कार्बन डेटिंग करा लीजिए, कागज कब का है, रोशनाई कब की है, 1400-1500 साल की पहले की है या नहीं, आप जितनी रिसर्च। ये नुस्खा जो रखा हुआ है म्यूजियम से, और एक नहीं एक से ज्यादा दसियों नुस्खे हैं दुनिया में मौजूद, जो मालूम है कि अली इब्न अबी तालिब के दस्ते मुबारक से लिखे हुए हैं, हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से, मशहद मुकद्दस में इमाम रबा अलैहिस्सलाम के कुतुब खाने से मुनसलिक मुत्तसिल, और आस्ताने कुद्दस रज़वी का जो कुतुब खाना है वहां एक पूरा कुरान का म्यूजियम है, मुज़े कुरान। उस कुरान के म्यूजियम में 14-15 नुस्खे रखे हुए हैं, जिनमें से 7 नुस्खों पे तो यकीन के साथ लिखा है कि ये किस मासूम के हाथ का लिखा हुआ है, बाकी 7-8 नुस्खों पर है कि ये मासूमीन में से किसी एक के हाथ का लिखा हुआ है। इतने नुस्खे मौजूद हैं, ये दिरायत है। ये जो नुस्खा सामने दस्तखत मुबारक मासूम से लिखा हुआ रखा है, इस इस दिरायत को, इस हकीकत को, इस वजूद को सामने रखें या उस रिवायत को सामने रखें, वहां राज और कुछ और था, असरार उस रिवायत के कुछ और हैं। वो जो नुस्खा पेश किया गया था, उस नुस्खे पर आयात के साथ हजरत ने आयात की शान नजूल और तावीन की तरफ भी इशारे फरमाए थे। वो तावीन न तब काबिल कबूल थी मुखालिफीन के लिए, न आज काबिल कबूल है, इसलिए वो नुस्खा हजरत ने वापस ले लिया। ये नहीं कि कुरान कोई और था, आयात की तरतीब कुछ और थी, सूरों की तरतीब कुछ और थी, ऐसा नहीं है। वरना फिर यही अर्ज कर रहा हूं ये बात कि ये जो दस्ते मुबारक से लिखे हुए कुरान है, ये क्या तकिया है? मासूम खुद तकिया करता नहीं है, तकिया सिखाता है। मासूम खुद तकिया नहीं करता, तकिया सिखाता है, तालीम देता है कि अगर तुम मुश्किल में पड़ जाओ तो अपनी जान को और इस ज़र्फ़ ईमान को बचाने के लिए क्या तदबीर करो। बहरहाल वो नुस्खे जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने लिखे थे वो दुनिया में मौजूद हैं। वो कुरान जो अमीरुल मोमिनीन ने पेश किया था वो कोई और कुरान नहीं था, उसके साथ जो तावील थी, अगर वो तावील कबूल कर लेते, वो तफसीर कबूल कर लेते, वो तर्जुमा कबूल कर लेते जो अली ने किया था, तो उम्मत में कोई इख्तिलाफ पैदा न होता। परवरदिगार हमें और आपको सबको इख्तिलाफात से महफूज रखे, इस कुरान को लफ्ज ब लफ्ज कलिमा ब कलिमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरानी अखलाक को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें अखलाक तौहीदी, अखलाक कुरानी, अखलाक मुहम्मदी, अखलाक अहले बैत मुहम्मदी से सरफराज फरमा। दुनिया में अमन व आफियत का निज़ाम कायम कर दे, दुनिया से हर तरह के शर को, हर तरह की बेचैनी को रफा फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुक अलैहि व अला आबाएह फी हाज़िहिस साअति व फी कुल्लि साअ वलियन व हाफिज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا